आचमन करा दिया, जीरो नहीं है, कभी जीरो नहीं, वो क्या है, पूर्णम, पूर्णमिदम, पूर्णम मदह, पूर्णात पूर्णम उच्यते, पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णमेव अवशिष्यते। वो जो ब्रह्म है जो सबको बढ़ाता है, आनंद देता है, प्रेम देता है, जो रस स्वरूप है, रसिक भी है और रस में परिपूर्ण स्वयं रसिक भी है और रस स्वरूप भी है और रस को देने वाला भी है, तीनों चीजें उसमें है। इसलिए वह साधारण नहीं है, इसलिए उसको कहते हैं उपनिषदों में ज्ञान के चार भाग में, जतो वा इमानी भूतानी जायन्ते जेन जातानी दत्तम अभी संविशंति तद विजिज्ञासा ब्रह्म, जिससे अश्य जिसको हम तुम लोग देख रहे हो, ये ब्रह्मांड विश्व अखिल प्राणियों से भरा हुआ, नदी नालों से भरा हुआ है, लाखों प्राणी से भरा हुआ है, पेड़ पौधे गुल्म लता इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते हम लोग। ये सब कहां से आया, उसी से आया। ये कौन उसका पालन पोषण करता है, वही करता है और अंत में ये सब जगत कहां प्रविष्ट हो जाता है, उसी में, जीरो से नहीं आ सकता। देयर मस्ट बी समथिंग, जीरो होने से उसमें कोई गुण नहीं रहा। जीरो में क्या गुण है, उसमें कोई स्पंदन है, उसमें रस है, आनंद है। जीरो बढ़ सकता है, घट सकता है ही नहीं है, तो बढ़ेगा घटेगा क्या। इसलिए हमारे वेदांत शास्त्र में बतलाया गया इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस एनी अमाउंट इज इक्वल टू इन्फिनिटी। किंतु जीरो प्लस वन कितना हो जाएगा,
वन।
जीरो माइनस वन,
माइनस वन।
हाँ जरा कम बोलिए, कम बोलिए। तो इसलिए वो घटता बढ़ता है, किंतु पूर्ण जो है वो घटता बढ़ता नहीं है। इसलिए विवेकानंद स्वामी जी ने बड़ी कुशलता से उसके प्रथम चरण को यहां आरंभ करके जीरो में ही लोगों को ऐसा कर दिया जो लोग भारत की गौरव को समझें, जबकि साधारण रूप में नीचे ये स्थाय है तो वो पूर्ण में क्या कल्पना हो सकती है। इसलिए हमारा जो ब्रह्म है, ब्रह्म से भी एक पर ब्रह्म शब्द है, ओहो भाग्यम, ओहो भाग्यम नंद गौ प्रजौ किसाम जन्मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। हम लोग सभी ब्रह्म हैं, किंतु अभी ब्रह्म नहीं है। जिस समय अपनी अनुभूति होगी कि मैं ब्रह्म हूं, चिन्मय वस्तु हूं, मेरा जन्म मरण नहीं है, तो उस समय ब्रह्म होंगे। और जब उस पर ब्रह्म को समझे जिससे ये जगत की सृष्टि होती है, जिससे आनंद होता है, जिसमें सब कुछ है, परिपूर्ण है, जब उसको जान लेंगे तब हम उसके दास हो जाएंगे। क्यों, गीता उपनिषद यह भी एक उपनिषद है, वो कहती है ममई वांसो जीवलोके जीव भूत सनातन। ये जीव जो हम लोग हैं जीरो नहीं है, परब्रह्म के हम अंश हैं। परब्रह्म कौन है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, ये कौन है, जिसमें संपूर्ण रस हो, जिसमें संपूर्ण ज्ञान हो, जिसमें संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड हो, हम में नहीं है, किंतु परब्रह्म में है, हम सब भी उसमें हैं। ज्ञान का स्रोत मूल वहां से है, प्रेम का मूल स्रोत वहां है, क्योंकि सबका मूल है वो। इसलिए इन लोगों का नाम पड़ा उपनिषद, इनके पढ़ने से उसका ज्ञान होगा, इसलिए उपनिषद उपनिषद। जिसके निकट होने से, जिनका ज्ञान हमारे अंदर में आने से, उस पर ब्रह्म के हम लोग निकट पहुंच सकते हैं, उसके समान हो सकते हैं। नित्यो नित्यानाम एक चेतन है, वो परम चेतन का भी चेतन है। चेतन माने जिसके अंदर में नॉलेज है, ज्ञान है, संपूर्ण सच्चिदानंद तत्व, वो परम ब्रह्म है। हम उसके पार्ट एंड पार्सल हैं। हम माया में अभी आच्छादित हो सकते हैं, पर ब्रह्म नहीं होता ना? इसलिए यही समझिए कि उपनिषद ये वेदांत माने होता है वेदों का सार, जिसमें भगवान से मिलन की, परब्रह्म से मिलने की विद्या जिसमें है, उसको कहते हैं वेदांत। वेदांत यह नहीं कहता कि जगत झूठा है और ब्रह्म झूठा है, कभी नहीं कहा गया कहीं वेदांत में ये जगत झूठा है और सभी ब्रह्म है, ये भी नहीं। सभी ब्रह्म के पास चेतन चेतनानाम एको बहुना, जो परम ब्रह्म है वही अपने अंश और पार्ट रूप में इस जगत में जीव के रूप में है। जब यह इस ज्ञान की उपलब्धि करेगा, उपनिषदों के ज्ञान के, वेदांत के ज्ञान को आरम्भ, तो उसमें क्या है, व्यास जी ने वेदांत का सार एक ब्रह्मसूत्र नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें 550 सूत्र हैं, उसको ब्रह्मसूत्र, उसको वेदांत सूत्र भी कहते हैं। उसमें लिखा अरूपवत एव ही तत्प्रधानत्वात्। ब्रह्म कैसा है, जो हमारे शंकर हैं उन्होंने अपनी फिलॉसफी में लिखा है कि वो अरूप है, उसका रूप नहीं, किंतु उसका एक कारण था, बौद्धों को समझाना था, इसलिए उन्होंने ये थ्योरी ली। वेदांत में कहीं ऐसा नहीं, ये ब्रह्म का रूप नहीं है, हम देखते नहीं है इसलिए कह सकते हैं कि वो रूप नहीं है, किंतु देखा जा सकता है। कैसे, ओं तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति, पश्यन्ति माने क्या, उसको देख रहे हैं, मुक्त महापुरुष लोग उनको देखते हैं, पश्यन्ति स्पष्ट रूप में, इसलिए उसको देखा जा सकता है, उसको अनुभव किया जा सकता है। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, अरूपवत एव ही तत्प्रधानत्व। शंकर से के एक थे सार्वभौम भट्टाचार्य, महाप्रभु से विचार हो रहा था जगन्नाथ, उन्होंने कहा तो भगवान तो अरूपवत है, रूप नहीं है उसका। कहिए कैसे, अरे जिसे जन्म होता है, जिसे स्थिति होती है, जिसमें सर्व विश्व चाहे, जो पालन करता है, जो बड़ा कृपालु है, उसका रूप नहीं होगा, ऐसा कहीं नहीं। अरूपवत माने क्या, अरूपवत न रूपवत, रूप के समान नहीं, और रूप ही तत्प्रधानत्व, तो रूप ही उनका प्रधान है। जो देख नहीं रहा है, तुम्हारी अविद्या की वजह से नहीं देखता है, तो उनका रूप है, और उसी लिए जिसमें रूप है, इसलिए जगत रूप वाला प्रकट हुआ, नहीं तो प्रकट नहीं होता, जीरो से जीरो होगा और कुछ नहीं हो सकता। इसलिए उनमें समस्त रूपों की पोटेंसी है, इसलिए इतने रूप हैं। यदि कॉज में, कारण में ये रूप नहीं है, तो ये एक्शन में कहां से आएगा। इसलिए कॉज एंड एक्शन थ्योरी के विचार से, उस कॉज में, कॉज माने ये जगत का जो कारण है पर ब्रह्म, उसमें सब रूप हैं, तभी ये रूप आया। इसलिए अरूपवत न रूपवत ऐसा मत कहो, रूप एव तत्प्रधानत्व, वही रूप ही उनका प्रधान है। इसलिए वेदांत में इसका कैसे उसका प्रत्यक्षीकरण होगा, कैसे दर्शन करेंगे की आराधना, अपि संराधना प्रत्यक्ष अनुमान अभ्याम, अपि संराधनो, अपि सं आराधनो, आराधना के द्वारा उसको हम देख सकते हैं। प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम, प्रत्यक्ष रूप में भी और मन के द्वारा भी, आत्मा के द्वारा उसको देख सकते हैं, जैसे धूप प्रहलाद इत्यादि ने देखा, नारद जी ने देखा, उपनिषद के जो हैं उन लोगों ने उसको दर्शन किया, इसलिए उसका रूप है। यदि वो निर्गुण है, शून्य है, उसमें दया नहीं है जिस व्यक्ति में, जिसका रूप ही नहीं ले सकता है, वो परब्रह्म कैसे हो सकता है? तो उसको लाभ क्या है उसकी आराधना करके, जब रूप उसमें दया ही नहीं है, निष्ठुर व्यक्ति की आराधना क्यों करेंगे? इसलिए बतला शक्ति शक्ति मतोर अभेदा, ये वेदांत का विषय है। शक्तिमान जिसमें शक्ति है और ये शक्ति दोनों एक हैं, अलग अलग नहीं है, वही शक्तिमान परब्रह्म है और उसकी शक्ति से उसका भेद नहीं। परास शक्ति विविध, उसमें शक्ति है, उसमें करुणा शक्ति है, उसमें सारी शक्तियां हैं, उसमें ज्ञान है, रस है, प्रेम, प्रेम का वो पुतली है। ये वेदांत का विचार है। संकीर्ण में 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा बोल लिया, इसलिए अधिक समय लेना नहीं चाहता हूँ, अधिक समय बहुत चाहिए ये सबको समझने के लिए। संक्षेप में यही वेदांत का विचार आप लोगों के सामने प्रकट किया, आप लोग इन चीज़ों को समझेंगे और समझ करके, यही हमारे भारतीय मनीषा का और वेदों शास्त्रों का विचार है। पर ब्रह्म एक है, प्रेम के द्वारा उसको जाना जा सकता है, और जिसके अंदर में प्रेम हवा समस्त लोगों से प्रीति करेगा, प्रेम ही हमारा सबका धर्म है, उसका स्वरूप ही है प्रेम, सबसे प्रेम रखा जाए। ये कैसे होगा? जब भगवान को, उस पर ब्रह्म को हम अपने को अर्पित कर देंगे। नैमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया बहुना श्रुतेन जमेव एष विणुते तेन लभ्य तस्यात्मा विवृणुते तनु स्वाम। यह आत्मा जो है, परमात्मा जो है, ज्ञान के द्वारा नहीं जाना जाएगा, बुद्धि के द्वारा नहीं, पढ़ने लिखने के द्वारा नहीं, बहुत सुनने के द्वारा नहीं, ये कैसा होगा? जब हम उसके प्रति आत्मसमर्पण करेंगे, हम बुरे हैं, अच्छे हैं, भले हैं, अब मैं तुम्हारा शरणागत हुआ, अनकंडीशनली सरेंडर करो, अपने को रियलाइज करा देगा, यही सबसे, इसी का नाम है भक्ति। गौर प्रेमानंद कृष्णदास जी कीर्तन संक्षेप में।
प्रव्रजंतमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मानतोऽस्मि तवैवास्मि तवैवास्मि न जिमामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तं नयमाम चरणान्तिके।
हम लोग परम सौभाग्यवान हैं कि यहाँ बैठ करके हम लोग 4-5 दिनों से भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं। हमने पहले बतलाया था 7 दिन की कथा बहुत संक्षिप्त होती है, उसमें श्रोताओं का दिल अघा नहीं पाता है, तरह तरह की शंकाएं, तरह तरह की व्यातें होती हैं, इसलिए वो पूर्ण रूप से नहीं हो पाता, वो तो उच्च अधिकारियों के लिए है, और 1 महीने वाला उससे अच्छा। उसमें कुछ विस्तृत रूप में कृष्ण तत्व, भगवत तत्व की, जीव तत्व की, और जो भागवत का विषय है उसमें कुछ अनुशीलन श्रवण और कीर्तन किया जा सकता, और उससे जो एक एक श्लोक का क्या गुड़ रहस्य है, क्या भाव है, उसके अंदर में क्या शब्द व्यंजना छिपी हुई है, उसका रहस्य क्या है, वो सब के साथ में उसको समझाया जा सकता है, वो सर्वोत्तम कहा जाता है। और जो लोग उत्तम महाभागवत सब समय, जैसे शंकर जी हैं, हनुमान जी हैं,
काभूषुंडी जी हैं, इधर में सुखदेव जी हैं और लोग सब भक्ता लोग हैं, नारद जी हैं, जो निरंतर भागवत इत्यादि की भगवत तत्व की कथाओं को दिन रात हृदय में चिंतन करते हुए विभोर रहते हैं, हजारों वर्षों की समाधि लगी रहती है वो समाप्त नहीं होती। भगवान की कथाएं नित्य नवीन है। हम तो एक जा रहे हैं और कोई एक सुंदर लड़की है, उसका मुख देखा फिर मुख फिरा लिया, चले आगे और देखते हैं नई नई, तो वो तृप्ति होती चली जाती है क्योंकि। किंतु भगवान की कथाएं ऐसी रसीली और नव नमायमान युक्त हैं कि साधक पदे पदे उसमें पकता जाता है, रस स्वरूप ही हो जाता है, फिर दूसरी किसी चीज की सुनने की जरूरत नहीं होती। अभी हम लोग 3-4 दिन में क्या हम लोग कथा उसमें कितना कह सकते हैं, तभी जहाँ तक हो सका है हमने परिवेशन करने की चेष्टा की। अब आज का समय और कल का समय है, कल तो कम ही समय मिलेगा, तो भी हम लोग चेष्टा करेंगे। भागवत सुनने में बहुत से लोगों को ये शंका होती है, आप लोग राधा और गोपियों की इतनी महिमा बतलाते हैं और राधा जी का नाम तो श्रीमद् भागवत में है ही नहीं, तो फिर आप लोग कहाँ से इतना लाते हैं। भाई जैसे हमारा शरीर है कृष्ण का, राम का भी तो शरीर ऐसा ही था, अंतर क्या था? हमें भी आसक्तियां थी, उनमें भी आसक्तियां थी, उनमें भी हमारी जैसे ही बचपन में जैसे हम चोरी करते थे झूठ बोलते थे, उनमें भी वैसा ही देखते हैं, वो भी लड़ते थे झगड़ते थे, कंस इत्यादि के साथ में लड़े, रामचंद्र जी रावण के साथ में लड़े, और देखो तो उनको ये पता ही नहीं चला ये सीता का हरण करके कौन ले गया, दिल बिलाते रहे राम, और कृष्ण गोपियों के लिए दिन रात तड़पते रहे विरह में। देखो तो फिर उनकी भगवत्ता कहाँ से है? कृष्ण को बहलिए ने बाण मारा, आप लोगों ने सुना होगा अंत में, और बाण लगा कृष्ण को और वो मर गए, तो फिर उनकी भगवत्ता क्या है? जो आदमी जन्म सकता है, जन्म लिया वो मरा, और तरह तरह की समस्याएं हमारे जैसे ही उनके अंदर में लगी रही, समस्या जैसे हम में है, हमसे अधिक समस्या राम में थी ने? हमको तो 12 वर्ष के लिए 14 वर्ष के लिए वनवास नहीं हुआ, उनको तो वनवास हुआ, और स्त्री भी कोई चुरा ले गया, फिर अपनी स्त्री को छोड़ देना पड़ा, फिर कितनी कितनी समस्याएं हुई उनके लिए, हम लोगों के लिए तो इतना समस्या नहीं। तो फिर ये तो लोगों का चित्त शंका में, शंका पंख में डूबने लग जाता है, समझ नहीं पाते, समझते कि हम और वो तो एक ही जैसे थे, सतयुग और कलयुग का तो एक ही है, ये समझ नहीं पाते हम, थोड़ा सा इसके लिए समय चाहिए। तो संक्षेप में आपको बतला देता हूं, पहले हम कृष्ण का अंतर ध्यान की ही बातें थोड़ी सी ले लें। जदुवंशी जितने थे वो सरकंडे से परस्पर लड़ लड़ करके कट करके मरे, और कृष्ण एक पेड़ के नीचे बैठे हुए चिंतन कर रहे हैं, और बहेलिए ने बाण मारा, उनके चरणों में लगा, और फिर वो साम धाम को पधारे। वहाँ पर कुछ ब्राह्मण लोग आज भी दिखलाते हैं, जहाँ पर कि कृष्ण का दाह संस्कार हुआ था शरीर का, वो भी स्थान दिखलाते हैं, और ये कहते हैं कि भगवान कृष्ण राम नृसिंह कल्कि वामन उनका जन्म भी नहीं होता है और मरण भी नहीं होता है, इसका सामंजस्य कैसे करेंगे? साधारण अकल के द्वारा नहीं होगा, साधारण बुद्धि से नहीं होता। एक मदारी था, वो अपने 2 लड़कों के साथ में 8 और 9 वर्ष का, और अपनी स्त्री के साथ में स्त्री नवज्योति नित्य कला में बड़ी पारंगत होशियार एक कलाकृति जानने वाली लड़की थी। एक राजा के घर में वो लोग गए, उनका दरबार लगा हुआ था, देखने में बड़े सुंदर जवान ये लोग थे। नट ने जाकर के कहा, महाराज हम अपनी विद्या कुछ आपके सामने में प्रकाश करना चाहते हैं, आप सभी दरबारी लोग हैं, कुछ मजा भी आ जाएगा, आप लोग देखिए, और यदि हो सके तो हम लोग तो नट जाति के हैं, कुछ पुरस्कार दे देंगे। ये ठीक है, बस उसने दो बांस खड़े कर दिए और उसके ऊपर से एक रस्सा पत्ती से लेकर के उसको दोनों तरफ में उसको बांध करके और उसको खड़ा कर दिया, और उसकी पत्नी एक बांस हाथ में लेकर और खट 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 ऊपर में चढ़ गई और चढ़ करके दोनों बांसों पर केवल जो रस्सी पड़ी हुई है उसी के ऊपर में बैलेंस साध करके अपने सिर पर एक घड़ा उसके ऊपर में एक घड़ा उसके ऊपर में एक घड़ा लेकर और बांस को ऐसे रख करके और नृत्य कर रही है, इधर से उधर उधर से इधर चली आ रही है। इस प्रकार से कला कौशल दिखलाया कि राजा और रानी बड़े प्रसन्न हुए। रानी तो ऐसी प्रसन्न हुई उसकी कला को देखकर, उसी में किस प्रकार से लचक जाना, इधर उधर लचक जाना और घड़ों का बैलेंस भी ठीक रखना। जब उतरी तो रानी ने अपने गले का नौ लाख रुपए का हार प्रसन्न होकर के देखा, आज तक तो हमने ऐसा देखा नहीं, बस उसके गले में दे दिया। उसके दोनों बच्चे वहीं पर खड़े थे, एक 8 का एक 9 का, बड़े होनहार लड़के, बड़े सुंदर, बड़े फुर्तीले। उन्होंने मैये का उधर से उधर हार पकड़ लिया, इसने इधर से हार पकड़ लिया, दोनों खैचातानी कर लें। मैया ने अपने गले से निकाल करके ऐसे छोड़ दिया बीच में, और जो बलवान हो वो खींच ले, तो दोनों जोर से खींचने लगे किंतु कोई सके नहीं। तो दोनों ने झट हाथ तो छोड़ दिया और तलवार उनकी थी, बस म्यान से खींचा, उसने खींचा, उसने मारा, उसने मारा, वो दोनों गिर गए कट करके गिर गए। अब तो हाहाकार मच गया है, देखो तो रहने का जी हमने दिया खुशी के लिए, और इनके दोनों लड़के कट करके मर गए। इतने में वो नट हाहाकार करता हुआ आया, हाँ हमारे दोनों बच्चे चले गए, अब किस लिए जीवन। बस झट देखते देखते उसने तलवार उठाई और खच मारा, और वो लड़की भी उसकी पत्नी भी, हमारे ये तीनों गए अब किस लिए संसार। बस उसने भी तलवार उठा खच मार दिया। अब तो हाहाकार हो गया, ये क्या किया इसने। बस बड़े दुखी हुए, सभा विसर्जन कर दिया और लोगों को कहा कि भैया इसकी लाश यहां से हटा दो। रात भर सोचते रहे। इतने में सवेरे पत्र आया रानी के पास, आ राजा के पास, महाराज आपने तो हमारी पहली स्त्री की यह नचने की विद्या नित्य विद्या को देखकर के प्रसन्न होकर 9 लाख हर दिया, और ये दूसरी जो लीला हमने दिखलाई इसका पुरस्कार हमें नहीं मिला। हम अभी जीवित हैं, हमारा घर पास ही में है, आप लोग देख सकते हैं, हम लोग चारों के चारों जीवित हैं और प्रसन्न चित्त हैं, आपके उपहार के लिए हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। भाई ये देखो तो अजीब बात। बस सवेरे लेकर के राजा अपने कुछ दरबारियों को लेकर के देखे तो बात सच है या झूठ है, गया तो देखा जो दोनों लड़के मुस्कुराते हुए हार लेकर के खड़े हैं, वही 9 लाख हार, और रानी, और जब गए तो मुस्कुराते हुए उनका अभिवादन किया, और वो दोनों मुस्कुराते हैं, महाराज हमारा उपहार कहाँ है, हमारा जो हमने दिखलाई ये, हम लोग मरे नहीं थे, ये तो हमारी कलाबाजी थी। अच्छा, बहुत प्रसन्न हुए, उन्हें कुछ इनाम दिया।
ये झूठ बात नहीं। हमने मथुरा में देखा, बीसी राय का आप लोग नाम जानते होंगे, कलकत्ते के प्रसिद्ध पीसी सरकार। वो कलकत्ते में जब थे तो ब्रिटिश जमाना था, उन्होंने कहा जी आज हम गवर्नर हाउस में, जो वहां पर फोर्ट में है, फोर्ट विलियम कलकत्ते में, उसमें हम आज कुछ मेस्मेरिज्म दिखलाएंगे, हाथ की सफाई दिखाएंगे। वहां के गवर्नर और जितने जितने सब लोग थे, और उनके कोई दिल्ली से भी आए थे, वाइसराय या कौन था, वो सब लोग एकत्रित थे, मिलिट्री के बड़े बड़े अफसर लोग सब वहां पर थे। उन्होंने कहा जी ठीक, 4 बजे हम आरंभ करेंगे, आध घंटा हम दिखलाएंगे। सब लोग ठीक घड़ी की नोक से देख करके 4 बजे वहां पर उपस्थित हुए। ये आया नहीं, 1 मिनट 2 मिनट करते करते, ये तो बड़े टाइम के पंक्चुअल विशेष करके अफसर लोग हैं, 15 मिनट हो गया नहीं आया, 20 मिनट हो गया। अब इन लोगों का क्रोध बढ़ने लगा, आएगा तो उसको हम लोग दंड देंगे, हम लोग का समय बर्बाद किया। वो ठीक आधा घंटे के बाद में पांचवाता हुआ, मुस्कुराता हुआ, बड़े शान से वहां पर पहुंचा। साथ ही साथ में वो पुलिस के कोई आईजी होंगे, मैंने कहा जी तो आप, तुमने इतना देर क्यों किया, समय था 4 बजे, आज तुम आता है 4:30 बजे। बहुत गर्म हुए, अभी तुमको हम दंड देते हैं, खिलाज नहीं होगा, तो आप बेकार का क्यों बिगड़ रहे हैं, अपनी घड़ी देखिए और सभी लोग घड़ी देखें, हम 1 मिनट यदि भी आए हों जैसे तो हमको दंड दीजिए। सबने घड़ी देखा जो ठीक 4 बजा हुआ है सबकी घड़ियों में, कहिए यही मेरा पहला खेला है। यदि ऐसे मैसमेरिज्म के द्वारा ऐसा व्यक्ति कर सकते, हमने देखा है जी गला काट लिया, बक्से में रख दिया और दो दो तीन तीन लॉक लगा दिए, कहा रे बेटा इधर आ जा, मथुरा की बात है, हमारे मठ के पास में, सबको दिखला दीजिए, गला काट करके उसमें भर दिया और रुंड वो कपड़े से लपेटा हुआ बाहर में पड़ा है। कहा जा बेटा बेटा जल्दी से आ जाओ, और आया पिताजी, आया पिताजी कहते हुए हजारों लोगों में से भीतर से हंसता मुकराता हुआ आ गया। देखा जे बक्से में कुछ नहीं। यदि एक मदारी ऐसा कर सकता है तो विश्व ब्रह्मांड का सृजन करने वाला कैसा मदारी होगा, ये समझिए। वो लड़कर करके मर जाएगा, वो उसको वो कट जाएगा। पूरा वन में आग लगी हुई थी, ऐसा किया और सब आग खा लिया। जो मिनटों में ऐसे ऐसे विश्व ब्रह्मांड का सृजन कर सकता है, ध्वंस कर सकता है, और उसको बाण लगने से मर जाएगा, ये बात है। इसलिए यह बात ठीक नहीं, जाने के समय में सब अपने परिकरों के साथ में गए, जो लड़ना देख रहे हैं ना, वो वैस्मेरिज्म था। आंख का यदि वो मदारी कर सकता है तो वो कृष्ण के लिए क्या समझ, कृष्ण तो एक ही साथ में जो गोपियां लाखों नाच रही थी उनके पास में एक एक कृष्ण वहां पर हो गए, ये कैसे संभव हो गया। मदारी भी नहीं कर सकता, मदारी का बाप भी नहीं कर सकता, और कैसे कर दिया। द्वारका में एक ही साथ किसी रानी के साथ में विवाह हो रहा है, किसी के सर में जग में स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं, 16,100 रानियों के साथ में एक उतनी लीला कर रहे हैं एक साथ, कैसे संभव। और हम के लिए तो सुनेंगे तो और आश्चर्य करेंगे। कल तो राम के संबंध में एक छोटी सी लघु कथा हमने कही, सती जी का मोह, इसलिए उसमें भ्रम नहीं होना चाहिए। जाने के पहले थोड़ा सा ऐसा देखा करके उनको जाना है, और झट ऐसा दिखला करके सशरीर देखा, ब्रह्मा और शंकर जी ने देखा, भगवान सब सर परिकरों के साथ में जैसे आए थे वैसे ही चले जा रहे हैं। देवता लोग इंद्र इत्यादि तो इस गति को लक्ष्य भी नहीं कर सके। नारद इत्यादि ने और अधिक रूप में देखा और हाथ जोड़ करके ये प्रभु कैसे जा रहे हैं। तो इसलिए इन चीजों को समझना साधारण, ये साधन भजन के द्वारा अनुभव होने वाला है। राधा जी का नाम नहीं है, मूर्ख कह सकता है जो राधा जी का नाम भागवत में नहीं, उनके एक एक लाइन ऐसी है जिसमें सब में राधा नाम। रामायण की चौपाई में ऐसी कोई चौपाई नहीं है जिसमें कि राम शब्द अंकित नहीं है। मूर्ख लोग जो तत्वहीन है वो नहीं दिख पाते। ऐसा कोई भी चौपाई नहीं है जिसमें राम नाम नहीं है। समझाने वाला हो तो, समझने वाला हो तो देखेगा उसमें सभी। वैसे श्रीमद् भागवत का ऐसा कोई शब्द ये श्लोक नहीं, मंत्र नहीं है जिसमें राधा जी का नाम और कृष्ण का नाम नहीं है। एक अभिधा वृत्ति होती है शब्द की, एक व्यंजना वृत्ति होती है, और भी तरह तरह की वृत्तियां मैं कितना कहूंगा आपसे। हमारे यहां व्यंजना वृत्ति कहीं कहीं पर, लक्षणा वृत्ति कहीं कहीं पर अभिधा से अधिक रसदार होती है। हमारी इस सभा में एक पंडित जी हैं, बाहर से आए हुए हैं, गले में दुपट्टा है, उस पर राम राम अंकित है, वो पीताम्बर सा जरा पीला रंग का है, और सब समय भगवत चिंतन में लगे रहते हैं। बतला सकते हैं वो कौन है? हम लोगों के बीच में बैठे हैं, बतला सकते हैं कहाँ है? हम पाठक जी कहेंगे उसमें वो रस आनंद नहीं है, जब इस वृत्ति से जब कहेंगे तो उसमें आनंद की धारा प्रवाहित होती है। कहां कहां पर कैसे उनका राधा जी का नाम आया है? सुखदेव गोस्वामी की आराध्या देवी हैं। जिस प्रकार से भारतीय संस्कृति में पत्नियों को अपने पति का नाम लेना निषिद्ध है, पति का नाम नहीं लेगा, आर्य कहेंगे, प्राणनाथ कहेंगे, और बहुत से शब्द हैं उसके द्वारा। सीता जी कैसे कहती हैं राम को? सीता राम और लक्ष्मण जा रहे हैं वनगमन में, जाते जाते दोपहरी प्यास लगी, एक वट वृक्ष के नीचे एक कुएं में गांव की पानिया पनघट पर पानी भर रही। दोपहर का समय, रामचंद्र जी को भी प्यास लग गई है, सीता जी को भी, लक्ष्मण जी को भी, वो पनघट देख करके वहां पर वो भी आए। राम और सीता और लक्ष्मण जी को देख करके गांव वाले मुग्ध हो गए। इतना सुंदर तपस्वी होते हुए, और ये महिला तो बड़ी अपूर्व सुंदरी है, ऐसी तो हमने देखा ही नहीं जीवन भर में। जब सीता जी ने ऐसे करके के पानी पिया, राम ने भी हाथ में अंजलि में पानी लिया, जैसे कि हम लोगों के पनघटों में पानी पिला देते हैं, ऐसे पी लिया। पीने के बाद में छाया में बैठे राम, लक्ष्मण पुरुषों की मंडली में बैठे, और सीता जी महिलाओं की, महिलाओं पानी ने भरना छोड़ करके वो बैठ गई। तो वो महिलाएं कह रही हैं, तुम्हारे पति, उनको संदेह हुआ ये किसकी, ये दो तो हैं पुरुष युवक, और ये अकेली है, तो ये दोनों में से किसी के एक पत्नी जरूर होगी, किंतु पत्नी किसकी है ये ठीक नहीं कर सकी। तो उन्होंने कहा तुम्हारे पति कौन है? तो उसने, सीता जी ने जरा घूंघट का आड़ दे करके ऐसे, लक्ष्मण ये गोरे है ना, ये मेरे देवर हैं। अब क्या इसका अर्थ हुआ? बस इतना ही कहा, ये जो गोरे हैं ये मेरे देवर हैं, तो इसका मतलब बाकी रह गया, वो मेरे पति हैं। ये तो भारतीय संस्कृति है ना। सुखदेव गोस्वामी के आराध्य देवता श्रीमती राधिका जी हैं। यदि वो राधा नाम स्पष्ट उच्चारण करते हैं तो उनकी सारी लीलाएं उनके हृदय में आती हैं। 6 महीने की समाधि लग जाती है, 7 दिन का तो समय, 6 महीने की समाधि लगेगी, हरि कथा कैसे होगी? क्या है सन्मासी को मुच्छा भवे,
राधा नाम मात्रे मूर्छा सन्मासिकी भवे, नुच्चरित मतस्पष्टम परीक्षित किन्हीं ने।
इसे परीक्षित को उन्होंने उच्चारण करके नहीं कहा, आप खुश हो, आपको स्पष्ट हो न हो, वो तो अपनी मर्यादा देखेंगे ना। जो अपनी इष्ट देवी का नाम ना, हमारी स्त्रियां यदि अपने पति का नाम ना, हे आर्य, हे नाथ, हे प्राणनाथ, है राधा जी कृष्ण को कृष्ण नहीं कहती, श्याम सुंदर कह देंगी, प्राणनाथ कहेंगी, हे रमण कह देंगी, कृष्ण कभी उच्चारण नहीं करेंगे, कपटी धूर्त चोर ये सब कह लेंगी, जो इच्छा सो कर लेंगे, बाहर भीतर काले चोर ये सब कह लेंगे, किंतु कृष्ण ये नाम उच्चारण नहीं करेंगे। उच्चारण करते ही वो मूर्छित हो जाएंगे, नहीं कर सकते। तो सुखदेव गोस्वामी को साधारण मत समझिए, इसलिए उच्चारण नहीं करते। और किस श्लोक में नहीं है, कोई बतलाए तो जी कि इस श्लोक में नहीं है, मैं उनको बतलाऊंगा जी कैसे सब श्लोकों में है। हमारे आचार्यों ने, हमारे जीव गोस्वामी ने, सनातन गोस्वामी ने, महाप्रभु जी ने, रूप गोस्वामी ने इसका वर्णन किया है जी कैसे। जैसे देखिए पहला श्लोक लेते हैं, जन्मादस्य जतः अन्वयादितरतस्य अर्थो अभिज्ञो सराट तेने ब्रह्म रिराज आद कवये मुह्यंत जत सूर्य तेजो बार मिदांग जत विनमयो तिसर्गा अमृता धामना स्वेन निरस्त कुछ कहम सत्यम परम धीमहि। ये पहला श्लोक। अब पहले श्लोक में है जन्मादस्य जतः, जिससे अस्य विश्वस्य, इस विश्व का, जिसको तुम देखते हो, जिसमें तुम हो, तुम्हारे सहित सबका जन्म स्थिति लय आदि जिससे संपादित होता है, जन्मादस्य जता, जता मैंने जिस से, वो परब्रह्म है। सत्यम परम धीमे, वो परम सत्य है, उसका मैं धीमे ध्यान करता हूं, वो प्रसन्न हूं। अब दूसरा अर्थ देखिए, जन्मादस्य जतः, जिससे जन्म आदि आदि रसस्य माने क्या, आदि रस का जिससे जन्म हुआ है। आदि रस क्या है, मधुर रस को आदि रस कहते हैं। गोपियों का कृष्ण के प्रति जो औपपात्य भाव मूलक जो उन्नत उज्ज्वल रस है, इसको आदि रस कहते हैं। उसी से जितने भी 12 रस हैं, उस आदि रस से श्रृंगार रस से उत्पन्न होते हैं, उसी के अंतर्गत है। उसी के अंदर में शांत दास्य सख्य वात्सल्य मधुर हास्य करुण अद्भुत वीर करुण रौद्र भयानक विभत्स इत्यादि सब उसी में समा, जहां पर वो रहेगा उसमें सब है। ये जो आदि रस है जिनसे निकलता है, वो कृष्ण देवस्य सत्यम परम धीमहि। किंतु यह बात भी कुछ गड़बड़ी है, पूरी नहीं हुई। रस अकेले निष्पादित नहीं होता, उसके लिए नायक और नायिका दोनों का होना उचित है, प्रियतम और प्रियतमा का, किशोर और किशोरी का होना दोनों का जरूरी है। इसलिए शक्ति और शक्तिमान दोनों चाहिए। शक्तिमान स्वयं कृष्ण है, अनंत शक्तियों की मूल, और समस्त शक्तियों की मूल कौन है, आद्या देवी पराशक्ति श्रीमती राधिका जी हैं। यद्यपि दोनों में भेद नहीं है, किंतु जगत को आनंद के रस में डुबाने के लिए और स्वयं आनंद में रस स्वरूप होने के कारण दो भागों में वो प्रत्यक्षी भूत होते हैं साधकों के हृदय में, सब जगह नहीं। इन दोनों के बिना आदि रस जो श्रृंगार रस है वो नहीं हो, मधुर रस हो नहीं सकता। इसलिए इस मधुर रस के लिए दो, एक नायक नायिका, सर्व नायिका शिरोमणि कृष्ण और सर्व नायिका शिरोमणि श्रीमती राधिका के द्वारा जिस आदि रस का प्राकट्य होता है वो कौन है? भर्गः देवस्य धीमहि, हमारे गायत्री में, और इसी में तेजो बारी मृदाम। तेज माने क्या? भर्गः तेज, ये गायत्री का ये अर्थ ये श्लोक है। इसलिए जैसे गायत्री में हम भर्गो देवस्य धीमहि, देव को नहीं धीमहि, भर्गो देवस्य, देवस्य भर्गः धीमहि, देव जो हैं कृष्ण उनकी जो शक्ति है उनको मैं धीमहि ध्यान करता हूं। यहां पर भी तेज कृष्ण की तेज है उनका, यहां पर सत्य मोही परम सत्य है, उन्हीं से मधुर रस निकलता है। वो न रहे तो अकेले कृष्ण जीरो जीरो हैं, निर्विशेष तत्व हैं, निराकार हैं। सीता जी न रहे तो राम निराकार है, निरंजन है, अगुण है या निर्गुण है, सीता जी के वजह से वो है। उसी प्रकार से ये कृष्ण जो शक्तिमान है, जो इतने गुणों के हैं, ये सब राधा जी के लिए है। राधा जी को उसमें से शक्तिमान से शक्ति को हटा दीजिए, जीरो हो जाएगा, कृष्ण निर्विशेष ये ब्रह्म हो जाएंगे। इसलिए यहां पर सत्यम परम धीमहि राधिका जी के लिए आया है, जिनके द्वारा मधुर रस निष्पादित होता है ये उसे निकलता है। हमारे ऋषियों ने, हमारे महर्षियों ने, सुखदेव गोस्वामी इत्यादि ने इसका वर्णन किया है, जिसमें बतलाया इसी के श्लोक में जन्मादस्य जत अन्वयादि तर्तस्य तेजो, नहीं इसके पहले तुम लोग मत बोलो, जन्मादस्य जता अन्वयादि तर्तस्य अभिघोषा तेने ब्रह्म हृदय आद कवे मुह्यंत जत सूरज। सूरज माने होता है यहाँ पर मुक्त महापुरुष लोग, ये लोग भी जिसमें मोहित हो जाते हैं, कौन? ब्रह्मा शंकर जी मोहित हो जाते हैं इस विषय में, उनकी शक्ति की धारणा नहीं कर पाते हैं। और जिन्होंने ब्रह्मा के हृदय में प्रकाश किया, तेने ब्रह्म हृदय, ब्रह्मा जी के हृदय में, और क्या, तेने ब्रह्म शब्द ब्रह्म को, भागवत को तेने प्रकाशित किया, किस में? सुखदेव मुनि के हृदय में, रस विचार वहां पर दिया है, राधिका जी को प्रकाश किया, तेने ब्रह्म हृदय हृदय जमुयंत सूर्यो तेजो बाहर मृदाम, ऐसे जो सप्तम परम धीमहि श्रीमती राधिका है। पहले श्लोक में राधिका जी को प्रणाम किया, भावना के अनुसार में किसी को कृष्ण के लिए ले लेते हैं, कोई पर ब्रह्म कृष्ण के लिए लेते हैं, कोई राधिका जी, जो रसिक भक्त हैं इसको लेते हैं। ये तो पहले श्लोक में, और तीसरे चौथे अध्याय में स्कंद में अराधसा रंशते स्वयं नमः। अराधसा, अराधसा ये कौन? राधिका माने सहतृतीय अभिभक्ति, अराधा सह जो रंश्यते स्वधामनी, अपने धाम में, नित्य धाम में जो सब समय रमण करते हैं, आनंद प्रदान करते हैं और समस्त जीवों पर आनंद की वर्षा करते हैं, राधिका जी का राधसा राधा सह अनाराधितो न्यूनं। सुखदेव गोस्वामी जी आनंद में भर करके जब कृष्ण अंतर ध्यान हो गए रासलीला स्थली से, सब खोजने लगी, विरह में तड़फने लगी। कृष्ण राधा जी के साथ में गए थे, लिखा तो नहीं स्पष्ट रूप से, किंतु उसके वर्णन से ऐसा लगता है, गोपियों ने देखा, अरे ये तो कृष्ण के ये चरण कमल हैं, किंतु उनके पास में सुकोमल उससे छोटे छोटे बड़े अच्छे मृदुल ये पैर किसके हैं? बीच बीच में कृष्ण के एक उस लड़की के जैसे मालूम होता है, ये लड़की का चिन्ह है, किसी गोपी का है। देख करके सभी आश्चर्य, ओ तो अकेले नहीं गया, ये तो चरण चिन्हों के बीच में इसका चरण चिन्ह है पास से। अच्छा, ओ अनाज तो लूना, कुछ कुछ सखियां नहीं समझ सकी, लेकिन तो राधा जी के पक्ष वाली जो उनकी ललिता विशाखा इत्यादि थी, उन्होंने अरे ये तो अनया राधितो राधितो राधा से राधितो, जिसके द्वारा इनकी सबसे में आराधना अधिक होती है। आराधना मैंने क्या, अराध शब्द से यह हुआ अपराध, राध आराधना आराध्य, ये शब्द सब ये बड़ी मार्मिक, बिना ये इसकी व्युत्पत्तिगत अर्थ के हम लोग समझ नहीं सकते, साधारण लोगों के लिए समझना बड़ा भारी कठिन है। राधा जी की जो क्रिया है उसी क्रिया का नाम है आराधना, राधा जी करती हैं। आराधना शब्द से राधा जी नहीं है, ऐसा मत समझिए जैसे शब्दों के अर्थ से उनको पीछे से दिया गया, ये रूढ़ शब्द है। राधा नाम से, राधा जो करती हैं उसकी नाम है आराधना। क्या करती हैं? कृष्ण की सब प्रकार से सेवा करती हैं, उनके मन के अनुसार में चलती हैं, उनकी सारी इच्छाओं को पूर्ण करती हैं, इसलिए उनका नाम है राधा। राधा शब्द से ये आराधना शब्द नहीं, उनकी क्रियाएं जो हैं